लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रेतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। फ्रेतेल्ली तुत्ती के तीसरे अध्याय में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम उन बातों की चर्चा करना नहीं भूल सकते हैं जो दूसरों की भलाई और अच्छाई की चाह रखती है, जिसके द्वारा पूरे मानव परिवार का विकास होता है। यह अपने में व्यक्तिगत और समाजों में नैतिक प्रौढ़ता की बात को समाहित करती है, जिसके फलस्वरूप पूरे मानव समाज का समुचित विकास होता है। नया व्यवस्थान इसे पवित्र आत्मा के फलस्वरूप परिभाषित करता है, जहां हम दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उससे भी बढ़कर यह दूसरों के लिए जहां तक बन पड़े उत्तम करने के प्रयास को प्रोत्साहित करता है, जिससे दूसरे अपने में मानवीय गुणों का विकास करें, न कि भौतिक वस्तुओं में धनी होते हुए अपनी परिपक्वता और स्वास्थ्य में बढ़ सकें। लातिनी भाषा में यह बेनेवोलेंसिया कहलाती है। यह एक मनोभाव है जो दूसरों की भलाई की चाह रखना है। यह दूसरों के लिए भलाई करने हेतु अभिमुख है, सबों के हित में कार्य करने की चाह जो अपने में सुंदर और सर्वोत्तम है, दूसरों के जीवन को उन चीजों से भरने की इच्छा जो अपने में सुंदर, हमारे लिए उत्कृष्ट और प्रेरणादायक है। लेकिन अफसोस की बात है, संत पापा कहते हैं, जिसे मैं याद दिलाने की आवश्यकता का अनुभव करता हूँ, हमने अनैतिकता और नैतिकता, अच्छाई, विश्वास और ईमानदारी का अच्छा खासा मजाक उड़ाया है। हमारे लिए अब इस बात को स्वीकारने का समय है कि हल्के रूप में पेश आने से हमारी भलाई नहीं है। एक बार सामाजिक जीवन का आधार बिगड़ जाता तो विभिन्न तरह के स्वार्थपूर्ण युद्धों की उत्पत्ति होने लगती है। अतः हमें सबों की भलाई को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, अपने और पूरे मानव परिवार की, और ऐसा करने के द्वारा हम एक सच्ची और संपूर्ण विकास की ओर बढ़ पाएंगे। हर समाज को अपने में यह देखने की जरूरत है कि मूल्यों का आदान प्रदान किया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम स्वार्थ, हिंसा, भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों, उदासीनता और अंत में एक ऐसे जीवन को बढ़ावा देते हैं जो अपने से परे जाने में असमर्थ हो जाता और अपने स्वार्थ में ही फंस कर रह जाता है। संत पापा फ्रांसिस विशेष रूप से एकजुटता पर बल देते हैं, जो व्यक्तिगत परिवर्तन के आधार पर नैतिक मूल्यों और सामाजिक मनोभावों को जन्म देता है। यह उन सबों से निष्ठामय समर्पण की मांग करता है जो शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्य हेतु जिम्मेदार हैं। मैं सर्वप्रथम परिवारों के बारे में सोचता हूँ, जिन्हें शिक्षा की प्राथमिक और मुख्य प्रेरिताई की जरूरत है। परिवार हमारे लिए प्रथम स्थल है, जहाँ हम प्रेम और भ्रातृत्व के गुणों को सीखते हैं, एक साथ मिलकर रहती और चीजों को साझा करती। एक दूसरे की देखभाल करते, एक दूसरे की चिंता करते हैं। वे विश्वास के प्रसारण हेतु अच्छे स्थल होते हैं, जिसकी शुरुआत भक्ति के उन छोटे और सरल अभिव्यक्ति से होती है जिन्हें माताएं अपने बच्चों को सिखलाती हैं। शिक्षक गण, जिन्हें बच्चों और विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे अपने में इस बात को चेतनामय ढंग से वहन करें कि उनकी शिक्षा दीक्षा का दायरा आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की बातों को भी अपने में समाहित करता है। स्वतंत्रता का मूल्य आपसे सम्मान और एकजुटता के गुणों को बाल्यावस्था से ही उन्हें सिखाया जा सकता है। शिक्षकों का उत्तरदायित्व शिक्षण और प्रशिक्षण है, विशेषकर इन दिनों में जब हम संचार माध्यमों और सूचनाओं के वृहद तंत्र को पाते जो सभी जगह फैल रहे हैं।
प्रेम संचार गाए जा।
एक ऐसा समय जब सारी चीजें अपने में अस्त व्यस्त और अपनी निरंतरता को खोती दिखलाई पड़ती हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए उचित है कि हम एकजुटता की गुहार करें जो हमारी चेतना से उत्पन्न होती है। जब हम एक जन सामान्य भविष्य को बेहतर बनाने के क्रम में मेहनत करते हैं, जहां हम अपने को दूसरों की क्षण भंगुरता हेतु उत्तरदायी पाते हैं। एकजुटता की ठोस अभिव्यक्ति सेवा में होती है, जहां हम दूसरों की सेवा करते हुए उन्हें अपनी ओर से विभिन्न रूपों में मदद करने का प्रयास करते हैं। सेवा का अर्थ अपने में संवेदनशील लोगों की चिंता करना, अपने परिवार, हमारे समाज, अपने लोगों की देखरेख करना है। ऐसी सेवा देने में व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और जरूरतों को, अपनी शक्तियों को किनारे रखता, क्योंकि वह अपनी नजरों को ठोस रूप में अति संवेदनशील व्यक्तियों पर गड़ाए रखता है। सेवा सदैव उनके चेहरों को देखती, उनका स्पर्श करती, उन्हें निकटता का एहसास कराती, यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में वह निकटता और सेवा में दुख का अनुभव करती है। सेवा अपने में कभी आदर्श नहीं होती, क्योंकि हम आदर्श विचारों की सेवा नहीं करते, बल्कि हम लोगों की सेवा करते हैं। श्रोताओं, जरूरतमंद व्यक्ति अपने में उनके संग एक विशेष एकजुटता को साझा करते हैं, जो अपने में गरीब और दुख का शिकार हैं, जिन्हें हमारी संस्कृति भूल गई है जैसा लगता है, या उन्हें वास्तव में छोड़ देने की सोचती है। एकजुटता एक ऐसा शब्द है जिसे सदैव अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। कुछ परिस्थितियों में यह गंदा शब्द बन गया है, जिसे हम उच्चारित करने का साहस भी नहीं करते हैं। एकजुटता का मतलब उदारता के छिटपुट कार्यों में संलग्न होने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ समुदाय के रूप में सोचना और कार्य करना है। इसका अर्थ जीवन सबों के लिए है, न कि सिर्फ कुछ एक के द्वारा वस्तुओं को अपने लिए हासिल करना। इसका अर्थ सामाजिक रूप में स्थापित की गई गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, भूमि और निवास, सामाजिक और श्रम के अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। इसका अर्थ मुद्रा के विध्वंसकारी प्रभावपूर्ण साम्राज्य का सामना करना है। एकजुटता का सबसे गहरा अर्थ इतिहास के मार्ग को तैयार करना है, और बहुचर्चित आंदोलनों के द्वारा यही किया जा रहा है। जब हम सामान्य निवास, हमारी पृथ्वी की देखरेख की बात करते, तो हम अपने में चेतना रूपी वैश्विक चिंगारी और एक दूसरे के लिए सोचने की अपील करते हैं, जो लोगों के हृदयों में अब भी व्याप्त है। वे जो अपने लिए पर्याप्त मात्रा में जल का उपयोग करते, यद्यपि वे इसे पूरे मानव परिवार के लिए बचा कर रखने की सोचते हैं, ऐसे लोगों ने अपने में नैतिकता की आकृति तैयार की है, जो उन्हें अपने समुदाय और अपने आप से परे जाने में मदद करती, जहां से वे आते हैं। यह अपने में कितना अद्भुत मानवीय सोच है। हम सबों से इसी मनोभाव की मांग की जाती है, यदि हम दूसरों के अधिकारों को पहचान प्रदान करने की सोचते हैं, चाहे उनका जन्म हमारी सीमाओं से परे ही क्यों ना हुआ हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरित पत्र फ्रेटेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
अशिक्षा को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, लोगों को हक दिलाएंगे, गरीबी को निकालेंगे।
वो कैसे?
वो है प्रेम संचार। मिलजुल कर काम करेंगे, मेहनत से हम कमाएंगे, विश्वास और एकता जगाएंगे, समाज को बदल डालेंगे।
वो कैसे?
वो है प्रेम संचार।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन विदेश सचिव मॉन्सिनियर पॉल रिचर्ड गलाघर ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति के 40वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मानवाधिकारों की नींव को फिर से तलाशने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने भाषण में कोविड-19 के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अब एक साल से अधिक हो चुका है, कोविड-19 महामारी जीवन के हर आयाम को प्रभावित कर रही है। इसके कारण अनेक लोगों की जानें गई हैं और यह हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य प्रणालियों में संदेह उत्पन्न कर रही है। इसने मानवाधिकार की रक्षा एवं विकास हेतु हमारी प्रतिबद्धता को भी चुनौती दी है और साथ ही इसकी संबद्धता की पुष्टि भी कर रही है। एक वैश्विक समुदाय के रूप में हमें मानवाधिकार की नींव को फिर से तलाशने की जरूरत है ताकि उसे प्रामाणिक तरीके से लागू किया जा सके। मानवाधिकार की वार्षिक घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव परिवार के सदस्यों में निहित प्रतिष्ठा और सम्मान एवं अपरिहार्य अधिकार को स्वीकारना स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव होती है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इन प्रतिबद्धताओं की घोषणा उन्हें प्राप्त करने और उन पर चलने से अधिक आसान है। उन्होंने कहा कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हर परिस्थिति में इन चीजों को मान्यता, सम्मान, सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया जाना अब भी बहुत दूर है। विदेश सचिव ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण होने वाली समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जारी महामारी के बीच अधिकारियों द्वारा लोगों पर लगाए गए स्वास्थ्य उपाय लोगों को अपने मानवाधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करने में बाधक है। कई लोग अपने आप को विषम परिस्थिति में पा रहे हैं, खासकर बुजुर्ग, अप्रवासी, शरणार्थी, आदिवासी, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और बच्चे। उन्हें जारी संकट के विपरीत प्रभाव से होकर गुजरना पड़ रहा है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मानवाधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध को सख्त आवश्यकता की स्थिति से ही उत्पन्न होनी चाहिए एवं तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब कोई दूसरा उपाय ना हो। अतः वैटिकन विदेश सचिव ने विचार, अभिव्यक्ति, अंतःकरण एवं धर्म मानने की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड-19 महामारी का विश्व स्तर पर जवाब प्रकट कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता की यह समझ सही नहीं है। परमधम पीठ धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए इसके सार्वजनिक साक्ष्य और पूजा उपासना एवं शिक्षा की अभिव्यक्ति एवं सामूहिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति की रक्षा करना चाहता है। अतः उन्होंने संत पापा के प्रेरित विश्वपत्र के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे समय में प्रत्येक मानव व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पहचानते हुए हम भ्रातृत्व की वैश्विक आकांक्षा के पुनः जन्म को योगदान दे सकते हैं। वर्तमान का यह संकट हमारे लिए खास अवसर प्रदान कर रहा है कि वैश्विक जिम्मेदारी की भावना को नवीकृत करने के लिए हमारे मानव परिवार में हम न्याय पर आधारित एकात्मकता और शांति तथा एकता की प्राप्ति के बहुमुखी दृष्टिकोण को अपनाएं, जो हमारी दुनिया के लिए ईश्वर की योजना है। अतः इस कार्य हेतु उन्होंने परम धम पीठ के सहयोग का आश्वासन दिया। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए वैटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक एवं प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदक्ष इवान यूरकोविक ने संयुक्त राष्ट्र के व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए महामारी के समय में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की परमधम पीठ की चाह को व्यक्त किया। दुनिया को इस समय कई प्रकार के संकटों से उबरना है तथा वैश्विक सहयोग के सिद्धांत को नवीकृत करना है ताकि इस कोविड-19 महामारी से ऊपर उठा जा सके। व्यापार एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 15वें सम्मेलन की तैयारी में आयोजित सभा को महाधर्माध्यक्ष ने सोमवार को संबोधित किया। महाधर्माध्यक्ष यूरकोविक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज की मानवता की आम चुनौतियों का सामना करते हुए खासकर कोविड-19 महामारी की वैश्विक बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की मांग कर रही है। वैटिकन राजदूत ने कहा, इस अप्रत्याशित संकट के विभिन्न आयामों, इसके समाधान और कोई नया विकास जिसको भविष्य प्रदान करेगा, वे आपस में नजदीकी से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्होंने वर्तमान के आर्थिक प्ररूप के बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुमुखी सहयोग अति आवश्यक है। इस बात पर गौर करते हुए कि कोविड-19 महामारी ने गहराई से याद दिलाया है कि यह निश्चय ही परस्पर निर्भरता की दुनिया है और आज की मानवता द्वारा सामना की जा रही चुनौती एक जिम्मेदारीपूर्ण एवं आगे बढ़ने हेतु सामूहिक कार्रवाई की मांग कर रही है। अतः उन्होंने कहा कि दूसरी समस्याओं पर ध्यान दिए बिना एक समस्या का हल संभव नहीं है। यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों एवं कारितास यूरोप ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि वह कोविड-19 टीका का समान वितरण सुनिश्चित करे, जब यूरोपीय संघ टीकाकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। यूरोपीय संघ ने दूसरे समृद्ध देशों की तुलना में टीकाकरण कार्यक्रम देर से शुरू की है। यूरोपीय संघ में केवल 5% लोगों को अब तक पहला डोज प्राप्त हुआ है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन ने 21 और अमेरिका ने 14% टीकाकरण किया है। जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, देश के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने एक बयान जारी कर सेना से अपील की है कि वे हिंसा से परहेज करें तथा वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान करें। 3 हफ्ता पहले देश के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को म्यांमार की सड़कों पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोग सैन्य शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और राष्ट्र के निर्वाचित नेता सान सू की को उनकी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ रिहा कराना चाहते हैं। इस बीच म्यांमार के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने फौज से अपील की है कि वे सड़कों पर संयम बरतें और संकट का समाधान करने के लिए वार्ता का सहारा लें। रविवार को एक बयान में म्यांमार के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने सड़कों पर हो रही हिंसा की निंदा की, यह कहते हुए कि इन दिनों की दुखद एवं दिल दहला देने वाली घटना ने हमारे देश में बहुत अधिक पीड़ा लाई है। अपील पर म्यांमार के कार्तिक धर्माध्यक्षों के अध्यक्ष यांगोन के धर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो, यांगोन के सहायक धर्माध्यक्ष जोन सो याओ हान और देश के धर्माध्यक्षों ने हस्ताक्षर किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।